नमस्कार। आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक नारी को उसका उचित स्थान देना ही होगा, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे
जी।
समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी नारी के स्थान और उनकी भूमिका पर क्या सोच रखती थी समाज के लिए, मानवता के लिए।
बिल्कुल। और ये किताब, जैसा आपने कहा, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करती, ये असल में समाज और मानवता के, आप कह सकते हैं, उत्थान के लिए नारी की जो अनिवार्य भूमिका है उसको रेखांकित करती है।
हाँ, अनिवार्य भूमिका
जी। तो चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों को जरा देखते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो पहला मुद्दा जो वंदनीय माता जी उठाती हैं वो है प्राचीन समय और आज की जरूरत। वो कहती हैं कि पुराने शांत समय में भी नारी का सम्मान जरूरी माना गया था।
हाँ बिल्कुल। और वंदनीय माता जी का तर्क यह है कि अगर उस समय जरूरी था तो आज का जो समय है, जिसमें थोड़ी उथल पुथल ज्यादा है, सोच और भावनाओं में काफी नकारात्मकता दिखती है।
हाँ, जिसे पुस्तक में नारकीय विकृतियां कहा गया है।
सही कहा, जलन, स्वार्थ, क्रोध, ऐसी चीजें। तो ऐसे माहौल में वंदनीय माता जी कहती हैं, नारी के जो जन्मजात गुण हैं, जैसे स्नेह, करुणा, सेवा, ये तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं।
मतलब ये गुण एक तरह से अमृत का काम कर सकते हैं आज की इस नकारात्मकता की आग को बुझाने के लिए।
बिल्कुल सही समझा आपने। ये समाज को संभालने के लिए, उसे वापस पटरी पर लाने के लिए अनिवार्य हैं।
पुस्तक में ये भी कहा गया है कि नारी का जीवन ही स्नेह, दुलार, वात्सल्य, सेवा, करुणा, इन सब का एक समन्वय है।
जी हाँ, ये उनके स्वभाव का, उनकी प्रकृति का हिस्सा माना गया है। और वंदनीय माता जी कहती हैं कि अगर उन्हें सही माहौल मिले, अवसर मिले,
हाँ,
तो वो इन्हीं गुणों से अपने आसपास के लोगों को बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती हैं। वो मनुष्य को पशुता से देवत्व की ओर ले जा सकती हैं।
पशुता से देवत्व की ओर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्वार्थी वृत्तियों से ऊपर उठकर
ऊंचे मानवीय आदर्शों की तरफ ले जाना, जीवन को सही नजरिए से देखना सिखाना।
और यही क्षमता शायद उन्हें पहली गुरु बनाती है, है ना?
हाँ।
खासकर बच्चों के लिए।
हाँ।
जीवन के शुरुआती सालों में।
बिल्कुल। वंदनीय माता जी इस पर बहुत जोर देती हैं कि जीवन के पहले 5 साल माँ ही मुख्य गुरु होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल वो उठाती हैं।
क्या?
कि अगर नारी खुद ही समाज में पद दलित स्थिति में है, मतलब दबी हुई है या बंधनों में जकड़ी हुई है,
हाँ,
तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कैसे देगी? वो गुरु की भूमिका कैसे निभाएगी? सिखाने वाले का स्थान तो हमेशा ऊंचा और सम्मानित होना चाहिए, है ना?
सही बात है, जैसे प्राचीन काल में गुरुओं का होता था।
जी, तभी तो उसकी शिक्षा का असर होगा।
जब आप कहते हैं पद दलित या बंधन, तो क्या ये सिर्फ सामाजिक रीति रिवाजों की बात है?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। वंदनीय माता जी का इशारा सामाजिक बंधनों के साथ साथ शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता और कई बार आत्मविश्वास की कमी से जो एक मानसिक बेबसी पैदा होती है, उसकी तरफ भी है। ये सब मिलकर उसे रोकते हैं।
ये बात तो समझ आती है। अच्छा, पुस्तक में एक जगह प्रसन्न और संतुष्ट नारी को मूर्तिमान गृह लक्ष्मी कहा गया है।
हाँ बिल्कुल, जो घर में एक स्वर्ग जैसा एक सकारात्मक माहौल बनाती है। लेकिन ये बात सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है।
अच्छा।
देखिए, परिवार हो या समाज, प्रगति तो सहयोग से ही होती है ना, है ना? और इस सहयोग का माहौल बनाने में उसमें नारी की भूमिका बहुत केंद्रीय है। उनके सक्रिय और सम्मानित सहयोग के बिना तरक्की संभव नहीं।
जैसे वो उदाहरण दिया है पुस्तक में, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती।
हाँ, या एक पैर से मंजिल तय नहीं हो सकती। समाज के दोनों पहिए, नर और नारी, दोनों का समान रूप से मजबूत और सहभागी होना जरूरी है।
और इसी समानता के महत्व पर वो गणित वाला उदाहरण भी है, है ना? वो बड़ा दिलचस्प है। एक के नीचे एक रखो तो 2 बनता है, पर बराबर में रखो तो 11।
जी, ये उदाहरण बहुत गहरा अर्थ रखता है। वंदनीय माता जी इसके जरिए ये दिखाती हैं कि जब हम नर नारी में असमानता रखते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे, तो उनकी कुल ताकत सीमित हो जाती है, बस जुड़ जाती है, जैसे 1 और 1 मिलकर 2।
हाँ।
लेकिन जब वो बराबरी पर खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, तो उनकी मिलीजुली शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जैसे 1 और 1 मिलकर 11 बन गए, यहाँ तो 5.5 गुना शक्ति बढ़ गई।
वाह, तो समानता सिर्फ नैतिक नहीं, ये तो व्यावहारिक रूप से शक्ति बढ़ाने का सूत्र है।
बिल्कुल, प्रैक्टिकल नेसेसिटी है ये।
इतिहास को देखें तो वंदनीय माता जी कहती हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत नारी के सम्मान से जुड़ा था।
जी हाँ, जब तक नारी को सम्मान मिला, उसे देवी माना गया, तब तक समाज उन्नत था। लेकिन
जब उसे केवल भोग्य या दासी समझा गया,
तब समाज का पतन शुरू हुआ। वंदनीय माता जी यहाँ चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि नारी की गरिमा को कुचलने के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। अगर उसे भोग्या समझा तो वो जहरीली प्रतिक्रिया दे सकती है, और दासी बनाया तो वो प्रगति में बाधा बन सकती है।
तो आज की समस्याओं की जड़ भी कहीं न कहीं इसी बिगड़े हुए नजरिए में है।
वंदनीय माता जी का तो यही मानना है। ये विकृत दृष्टिकोण ही कई समस्याओं का मूल कारण है।
ये तो बहुत गंभीर बात है, और अगर आज देखें तो देश की आधी आबादी तो नारी ही है।
बिल्कुल।
तो उन्हें सिर्फ बोझ न समझकर अगर उन्हें समर्थ बनाया जाए तो ये तो सीधी सीधी राष्ट्रीय शक्ति को दोगुना करने जैसी बात हुई।
हाँ, और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। सोचिए, एक समर्थ, सशक्त, सुसंस्कृत नारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो परिवार की आर्थिक और दूसरी उलझनों को सुलझाने में एक सच्ची साथी बन सकती है।
महंगाई और दूसरी मुश्किलों में पुरुष का हाथ बटा सकती है।
बिल्कुल। आज अक्सर वो शायद शारीरिक, मानसिक दुर्बलता या अनुभव की कमी के कारण ये नहीं कर पाती, पर वंदनीय माताजी कहती हैं कि उनमें जन्मजात क्षमता कम नहीं होती, जरूरत उन हालातों को बदलने की है जो उन्हें रोक रहे हैं।
तो कुल मिलाकर वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का संदेश एकदम साफ है, नारी को उसका उचित सम्मान और स्थान देना, ये सिर्फ नारी के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है।
जी, ये कोई नैतिक जिम्मेदारी का ही सवाल नहीं है, ये तो प्रगति, शांति और आज की जो जटिल समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक व्यावहारिक जरूरत है, एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है।
तो इस गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने परिवारों में, अपने काम की जगह पर, समाज में इस समानता और सम्मान को सच बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे और मिलकर क्या ठोस कदम उठा सकते हैं।
हाँ, ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए और फिर कुछ करने के लिए।